अब लाभ उठाएंगे। वो आज हमें भक्ति ज्ञान की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, उसके विषय में हमें ज्ञान देंगे और उनके ज्ञान से हम लाभ लेंगे। थैंक यू, नमस्कार। अब स्वामी जी प्लीज।
मेरे प्रिय आत्माओं, हम लोग श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर आदरणीय संत वृंद, माताओं बहनों सबके हृदय में बैठे सत्चित आनंद व्यापक स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कटे, 2 इंतजार में। इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है, इस पर हम आज विचार करेंगे, क्योंकि 84 लाख जूनियों में ये मनुष्य शरीर अति उत्तम है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी ये बताए हैं कि 84 जून विच मानुख जन्म दुर्लभ हो पाया, दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर को पाकर मनुष्य मौत से पहले पहले यदि आत्मा का अनुभव कर लेता है, आत्म अभिन्न ब्रह्म का बोध सद्गुरु की कृपा से कर लेता है, तब तो यह मनुष्य जीवन सार्थक है। वरना पशु पंछी और हमारे में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यम एतद पशु ही नराणाम ज्ञानाम ही तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीना पशु ही समाना। आहार नाम भोजन का है, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये पशु भी करते हैं मनुष्य भी करता है। लेकिन पशु और मनुष्य में इतना भेद है कि मनुष्य के अंदर परमात्मा ने एक विशेषता दी है, वो है विवेक, ज्ञानाम। ज्ञानाम ही तेषाम अधिको विशेष है। मनुष्य के अंदर विवेक है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है, परमात्मा ने ये विशेषता दी है। यदि मनुष्य मौत से पहले पहले विवेक करके आत्मा का अनुभव नहीं करता तो पशु और इस मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। वो चार पांव का जानवर है, ये दो पांव का है। और साथ संगत जी, ये मैं कहना चाहूंगा कि इस मनुष्य शरीर के अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि मनुष्य ऊंचा उठना चाहे तो धीरे धीरे उठ करके वो परमात्मा हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, ये क्षमता है कि वो परमात्मा हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसको जानकर व्यक्ति वही हो जाता है। तद अपश्यत तद भवत तदासी। आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि तीन चीजें दुर्लभ है, दुर्लभं त्रयमेव तद देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। तीन चीजें आसानी से नहीं मिलता, दुर्लभ है। उत्तम भाग्य हो और महापुरुषों की कृपा, तो ये तीन चीजें प्राप्त होती है। मनुष्यत्व, ये मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर पा करके यदि मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाए, सत्य की खोज की प्यास जग जाए, तब तो समझ जाओ कि ये जीवन सार्थक है। लेकिन मनुष्य शरीर पा करके सत्य की प्यास नहीं जगा तो ये मनुष्य से भी, पशु से भी गया गुजरा है। पशु के शरीर, हड्डियां, चमड़े, दांत, सिंग सारे काम में आ जाते हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर का आप जला करके बाजार में बेचना चाहो तो कोई 5 रुपया देने को तैयार नहीं। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। कोई महापुरुष का संग मिल जाए जिसने आत्मा का अनुभव किया है, जिसने परमात्मा को पाया है। गुरुवाणी में गुरु अर्जुन देव जी महाराज उपदेश करते हैं, चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जिसके अंदर ये अभिलाषा है, प्यास है, उद्देश्य है इन चार पदार्थों का, वो किसी संत महापुरुष के सानिध्य में जाए, संसार में जाए, क्योंकि अपने प्रयास से वो नहीं मिलता। अपने प्रयास से पदार्थ तो मिल सकते हैं, अपने प्रयास से पद मिल सकता है, संसार के वैभव प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव या परमात्मा का साक्षात्कार एक गुरु और परमात्मा की अनुकंपा, अनुग्रह, कृपा से प्राप्त होता है। जैसो चंदा उगवे है, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे। गुरु नाम अंधकार का है, गुरु नाम प्रकाश का है। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, और गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, ओ पारस कंचन करे, गुरु करे आप समान। गुरु वास्तविक में वही है जो अपने समान बनाता है, थोड़ा भी कम नहीं। जैसे एक जला हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक उसके संग होता है, उसके साथ जुड़ता है, तो जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को अपने जैसा बना लेता है, थोड़ा कम नहीं बनाता। ऐसे ही गुरुजन, संत जन, जिसने इस शरीर को पाकर जीवन को पाया है, वो अपने समान बनाते हैं। सत्संग जी, माता पिता हमको जन्म देते हैं, लेकिन जीवन हमको गुरु देता है। हजारों लोग ऐसे हैं जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, जीवन से वंचित रह जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य किसी सदगुरु, किसी ब्रह्मज्ञानी, किसी आचार्य के चरणों में जाकर श्रद्धा भक्ति से ज्ञान को उपलब्ध होता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। एक समय की बात है कि सुतिक्ष्ण मुनि अपने गुरु महर्षि अगस्त जी के शरण में गए और सेवा करके साधना करके उन्होंने वो चीज पा लिया जिसके पाने के बाद और कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रह जाती। सुतीक्ष्ण मुनि के अंदर गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है। सुतीक्ष्ण मुनि गुरु भक्त है। सात संगत जी जब एक दिन महर्षि अगस्त कहते हैं, ऐ सुतीक्ष्ण, जिस उद्देश्य से तुम मेरे पास आया था, वह उद्देश्य तुम्हारा पूरा हो गया है। हे सुतीक्ष्ण, जो जानना था, जो पाना था, वो तूने पा लिया है। जो जानना था वो जान लिया है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया है। अब तुम जाओ यहां से। वहां पर सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं अपने गुरुदेव महर्षि अगस्त जी के चरणों में बैठकर, गुरुदेव, आपने जो परम धन दिया है, परम ज्ञान दिया है, उसका मोल तो ये दास दे नहीं सकता है, लेकिन गुरु के लिए कुछ दक्षिणा देना आवश्यक होता है। बताएं आपके लिए मैं क्या दक्षिणा दूं? मैं आपके लिए क्या करूं? वहां पर महर्षि अगस्त कहते हैं, बेटा हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुमने हमें अपनी सेवा के द्वारा ऑलवेज प्रसन्न रखा है, और ऐसे भी मैं आप तक काम हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। वहां पर बार बार प्रार्थना कर रहा है, बेनती कर रहा है सुदेशन के, गुरुदेव जब तक आप कोई दक्षिणा नहीं लेंगे मेरा जीवन कृतार्थ नहीं होगा, आप कृपा करके कुछ मांग लें, कुछ लेंगे मेरे से। सात संगत जी वहां पर महर्षि अगस्त कहते हैं कि यदि तू देना ही चाहता है तो हमें भगवान राम का दर्शन करा। सात संगत जी को गुरु भक्त था सुदेशन, चरणों में नमस्कार किया और जंगल में जाकर के घोर तपस्या किया। उन्होंने सुतिक्षण ने मन से वाणी से भगवान राम की आराधना की और राम का स्मरण करते करते वो पागल जैसे हो गए। उनके अंदर इतना भाव जग गया, उनको चारों तरफ राम का ही छवि जो है सो दिखने लगा। एक बार वो ध्यान में बैठे थे और अंदर भगवान राम का दर्शन हो रहा है, उसे दर्शन कर करके वो पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और इतने मस्त हो गए सुतीक्ष्ण मुनि के डोल रहे हैं। यहां पर भगवान राम आए और बार बार कहते हैं सुदेशन आंख खोलो, मैं आ गया हूं, तू बार बार मुझे पुकार रहा था, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। लेकिन वो अंदर इतना मस्त है, अंदर दर्शन कर करके इतना ज्यादा मस्त है वो कि अपना तन मन शुद्ध सब खो बैठा था। सात संगत जी उसी वक्त भगवान राम उसके हृदय में सुदर्शन धारी भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिए और उनको राम प्रिय था, राम इष्ट था। जब अंदर देखते हैं कि सुदर्शन धारी भगवान विष्णु अंदर प्रकट हुए हैं तो अवाक होकर के आंख खोल लिया, और जैसे ही आंख खोला तो देखता क्या है कि सामने भगवान राम उपस्थित है। सात संगत जी सुतीक्ष्ण चरणों में गिर पड़ा और उसके प्रेम के आंसू से भगवान राम के चरणों को धो डाला। भगवान राम बहुत प्रेम से उठाते हैं उन सुतीक्ष्ण को, गले लगाते हैं और सुतीक्ष्ण तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे सम्मुख हूं, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। वहां पर सुतीक्ष्ण कहता है, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं हमारे ऊपर तो आप हमारे गुरुदेव का को दर्शन दें। महर्षि अगस्त हमारे गुरुदेव हैं और मैं उनको वचन दिया हूं, आप ये कृपा करें। वहां पर भगवान राम कहते हैं कि मैं उधर ही जा रहा हूं, वो और प्रसन्न हुआ। साथ सुतीक्ष्ण मुनि भगवान राम महर्षि अगस्त के आश्रम में गए। महर्षि अगस्त अभी बाहर ही खड़े हैं, सुतीक्ष्ण दौड़ा दौड़ा अंदर गया और गुरुदेव के चरणों में गिर करके प्रार्थना करता है, गुरुदेव भगवान आ गए हैं। साथ संगत जी महर्षि अगस्त उठ करके बाहर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और आदर सहित आसन देते हैं और वहां पर अपने शिष्य सुतीक्ष्ण को कहते हैं, सुतीक्ष्ण तू धन्य है, तू धन्य है जो आज हमारी मनोकामना को तुमने पूरा किया है। साध संगत जी गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो परम प्रेम का संबंध है, परम प्रेम का संबंध है, इससे बड़ा और कोई संबंध नहीं है। इसीलिए उपनिषद का वाक्य है, मंत्र है, ओम सहनावतु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम दोनों की रक्षा करें। हम का भाव गुरु और शिष्य, हम दोनों की रक्षा करें। किसी धर्म में, किसी शास्त्र में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो गुरु और शिष्य का एक साथ प्रार्थना किया गया है परमात्मा के आगे। ओम सहनावतु, हे ईश्वर, हम दोनों की रक्षा करें और हम दोनों की पालना करें। सास संगत जी इसलिए कहा गया है कि जिस तरह से मां बच्चे को दूध पिला करके बड़ा करती है और साथ में कहीं कुएं में ना गिर जाए, अग्नि में हाथ ना डाल दे, तो रक्षा भी करती है, रक्षा भी करती है और अपना दूध पिला करके पालना भी करती है। इसी तरह से गुरु जो है हमारे माता पिता के समान है। गुरु हमें ताड़ना दे करके बुराइयों से बचाते हैं और ज्ञान रूपी अमृत देकर हमको पालना करते हैं। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम गुरु की वंदना इसीलिए करते हैं। गुरु गोविंद दोवें खड़े, काके लागो पाओ, बलहारी गुर आपने, जिन गोविंद यो मिलाए। हम उस गुरु के ऊपर बलहार जाते हैं कि जो परमात्मा ऑलवेज व्यापक है लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आता। गुरु ने अकथ को भी जो हमें समझाया है, जो अलखनीय है, जो अलक्षण है, जो अदृश्य है, जो इंद्रियों से अतीत है, जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, ऐसा जो परमात्मा है उसका भी जिस गुरु ने अनुभव किया है उसके ऊपर हम बलहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं। साध संगत जी, जिस तरह से आकाश में पंछी को उड़ने के लिए दो पंखों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही जो मनुष्य ये चाहता है कि परमपिता परमात्मा के धाम बैकुंठ में जाए, उसके लिए भक्ति और ज्ञान, ये दो पंखों की आवश्यकता है। ये दो पंखों के द्वारा व्यक्ति बैकुंठ में जा सकता है। और बैकुंठ है क्या? तुम्हारा हृदय ही बैकुंठ है, कोई भौगोलिक जगह नहीं है आकाश में जहां आप जाओगे बाई प्लेन और बैकुंठ का दरवाजा खुलेगा और आप प्रवेश करो। भौगोलिक कोई वैकुंठ नहीं है, तुम्हारा हृदय ही वैकुंठ है। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, आप नड़े गिरवान में सिर नेवा कर देंगे। हृदय प्रेम का केंद्र है, मन विचारों का केंद्र है और हृदय प्रेम का केंद्र है। जो मन में जीता वो संसार में जीता है, कल्पनाओं में जीता है। हृदय में जीने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को पाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, साच कहो सुन ले हो सदै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्राण पाए। नारद जी कहते हैं, परम प्रेम स्वरूपाचार। भक्ति क्या है? परम प्रेम, परम प्रेम स्वरूप है। जिस तरह से ज्ञान पाने के लिए वैराग्य आवश्यक है, वैराग्य के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। आज तक जिसने भी ब्रह्म ज्ञान को पाया है उसके जीवन में पहले वैराग्य आया है। बिन वैराग्य न छूटा समाया, ऐसा गुरु नानक देव जी कहते हैं। वैराग्य के बगैर मनुष्य की आसक्ति नहीं टूटती, और जब तक आसक्ति नहीं टूटता तब तक ज्ञान नहीं होता। और भक्ति क्या है? जिसके हृदय में तड़प नहीं है कि अपने इष्ट के लिए, प्रभु के लिए। आप चैतन्य महाप्रभु को देखें, मीरा को देखें, नरसिंह मेहता को देखें, भक्त नामदेव जी को देखें, भक्त रविदास जी को देखें, भक्त धन्ना जी को देखें, भक्त पीपा जी को देखें, दादू दयाल जी को देखें, ये जितने भी भक्त हुए हैं उनका जीवन प्रेम से भरा हुआ। नारद जी कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम का उदय होता है उसके हृदय में भक्ति पीछे पीछे आ जाती है, अर्थात भक्ति जिज्ञासा। भक्ति का भाव यह है, अपने को इष्ट में समर्पित कर देना। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो, आपा पर का मिट गया जित देखा थे। जिधर भी देख रहे हैं उसी इष्ट को देख रहे हैं। मीरा से पूछती है, भगवान किधर है, तुम्हारे इष्ट भगवान कृष्ण कहाँ है? मीरा कहती है, वो एवरीवेयर है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई। और साथ संगत जी, जब भक्ति का प्राकट्य होता है हृदय में तो उसको संसार कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मीरा को जहर दिया गया, वो जहर भी अमृत हो गया। मीरा को बहुत तसीहे दिया गया, उसका हाथ बांध करके ऊंट पर बैठ करके रेगिस्तानी झाड़ियों में ऊंट को दौड़ा दिया। मीरा का सारा शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन फिर भी मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और सात संगत जी, जब प्रेम से पागल होकर भगवान कृष्ण की मस्ती में जब वृंदावन जाती है मीरा, तो जब मंदिर में प्रवेश करने लगती है पुजारी रोक देता है। इस मंदिर में सिर्फ पुरुष ही जा सकता, स्त्री नहीं जा सकती। मीरा देखो जवाब देती है, अरे पुजारी, पुरुष तो एक कृष्ण है, तो दूसरा पुरुष कहां से आ गया? ये सारा जगत तो स्त्रियां हैं, जीव रूपी स्त्रियां हैं, पुरुष तो एक कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। गुरु नानक देव जी महाराज कृष्ण के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी में पुस्तक किए हैं। एक कृष्ण सर्व देवा, सारे देवताओं में ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं उसमें कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवात आत्मा, और जो ये जानता है कि कृष्ण ही आत्मा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, भगवान कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि सचा मे न प्रणश्यति, ऐसा गीता में भगवान कहते हैं कि जो ये जानता है कि यही आत्मा सबके अंदर है और सबके अंदर जो आत्मा है वही इसके अंदर है, भगवान कृष्ण कहते हैं उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, वो मेरा स्वरूप है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं एक कृष्ण सर्व देवा देव देवात आत्मन आत्मन वासुदेवस्य जेको जाने भेव नानक ताका दास है। गुरु नानक देव जी कहते हैं उस मनुष्य का मैं दास हूं जो ये जानता है कि कृष्ण ही आत्मा है, आत्मा ही कृष्ण है, जिसको आत्म अभिन्न ब्रह्म का बोध हो गया है, कहते मैं उसका दास हूं। क्यों? कि वो परमात्म स्वरूप हो गया है। एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवात आत्मा आत्मं वासुदेवस्य जेको जाने भेव नानक ताका दास है सोई निरंजन देव, वह अब आदमी नहीं रहा, अब वो निरंजन हो गया, माया मन अविद्या से रहित हो गया है, अब वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, और ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है, ब्रह्मविद ब्रह्म है भवति, जो उसे जान लेता है वही हो जाता है। जब जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संज्योत समाना, उस इसीलिए सात संगत जी सब में ज्योत ज्योत है सोए तिसदे चानन सब में चानन। भक्ति क्या है? जैसे एक बूंद को सागर में डाल दो तो वो बूंद सागर हो जाता है, ऐसे ही जीव जब अपने को समर्पित कर देता है भगवान के चरणों में तो भक्त भगवान हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान कहते हैं हे अर्जुन तू सब कुछ छोड़कर इंद्रियों का धर्म, शरीर का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, सब धर्मों को छोड़ करके अपना जो तुम्हारा सत्चित आनंद और व्यापक स्वरूप है उसमें स्थित हो जाए। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब चाही जहां चाही गर्दन झुकाई दे, इसलिए टू गो बैक। बाहर खोजने से संसार मिलता है, बाहर खोजने से धन मिलता है, बाहर खोजने से तुमको ईंट पत्थर या चूना ही मिल सकता है, अंदर लौटने से परमात्मा का दर्शन होता है, अंदर लौटने से सच्चिदानंद का दीदार होता है, और एक बार मिलिया हो ना बिछड़े जे मिलिया हो, एक बार मिल जाए, एक बार अनुभव हो जाए, एक बार उसका दीदार हो जाए तो जो अनंत जन्मों की प्यास है वो बुझ जाती है। अनंत जन्मों की प्यास क्या है? अज्ञान सहित सभी दुखों की निवृत्ति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति, इसी को कैवल्य मोक्ष कहा है। जो रूट काउज है अज्ञान अविद्या, अपने स्वरूप को ना जानना। सच्चाई तो यह है कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, लेकिन ये जो कपड़ा है शरीर, इसी को अपना मान करके सुखी दुखी होते रहते हैं। जैसे कोई कपड़े को पकड़ के कहे कि मैं ये हूं मैं ये हूं, तो उसको क्या कहोगे कि दिमाग हिल गया है? विचार करके देखा जाए हर एक व्यक्ति इस कपड़े को पकड़ के ही कहता है मैं हिंदू हूं मैं सिख हूं मैं मुसलमान हूं मैं गोरा हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। बकवास करते रहता है। तो अमृत है, तुम्हारा जो स्वरूप है वो अमृत है, अमृत से पुत्र है, और जो उस अमृत के कुंड को पा लेता है, जान लेता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। इसीलिए नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में कि जिसके हृदय में भक्ति का उदय होता है वो सिद्धो भक्ति, वो सिद्ध हो जाता है, अमृतो भक्ति अमृत स्वरूप हो जाता है, तृप्तो भक्ति वो तृप्त हो जाता है, जन्म जन्म की उसकी प्यास बुझ जाती है। साध संगत जी एक संत हुआ है बुद्धे शाह, और उसका एक शिष्य हुआ है गुलाम। गुलाम एक जमींदार आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, ये जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे को मिलता है, कभी कभी बड़े बड़े वेद शास्त्र के ज्ञाता पीछे रह जाते हैं और अनपढ़ उसको पा लेता है। कबीर जी अपने बारे में बताए हैं कि मसी कागज छुआ नहीं, मैंने सारी जिंदगी कागज और कलम छुआ नहीं, और जो उन्होंने बोल दिए अनुभव के बाद वो यूनिवर्सिटी में लोग उसके ऊपर पीएचडी करते हैं, डिलीट करते हैं। वाल्मीकि जी कोई विशेष पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान राम के इस धरती पर प्रकट होने से पहले उन्होंने रामायण लिख दिया। इसको कहते हैं रितंभरा बोधि। जब पराज्ञान प्रकट हो जाता है तो उसके मुख से जो भी निकलती है वो धुर की वाणी होती है, वो सच की वाणी होती है। सासंग जी गुलाल एक जमींदार था और उसका नौकर था बुलाकीराम, वो बहुत गरीब था बुलाकीराम। ध्यान से सुनना, ये जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना आपके जीवन को बदल सकता है। ठीक है, आपने देश को छोड़ के परदेश आए धन कमाने के लिए और जी रहे हैं, धन एक आवश्यकता है जीने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान एक जरूरत है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन जरूरी भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान अभी और भी है। सिर्फ शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर के द्वारा तुमको परम धन पाना है, और यदि तुमने शरीर के द्वारा मौत से पहले परम धन नहीं पाया तो पशु और तुम्हें कोई अंतर नहीं, वो चार पांव वाला है दो पांव का। और साथ संगत ये भी कहूंगा कि ये जो दो पांव वाला पशु है ना, जब खतरनाक हो जाता है, गिर जाता है नीचे, तो इतना ज्यादा गिर जाता है कि उतना पशु भी नहीं गिरता। आपने किसी पशु को ये नहीं देखा होगा एटम बम बनाते हैं, देखा हजारों हजार लोगों को मारते, किसी पशु को नहीं देखा होगा, दवाइयों में मिलावट करते किसी पशु को नहीं देखा होगा, ब्लैक मार्केटिंग करते किसी पशु को नहीं देखा। ये जो दो पांव वाला पशु जब नीचे गिरता है ना, तो इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है कि पशु से भी नीचे गिर जाता है। लेकिन परमात्मा ने एक पॉसिबिलिटी भी दिया है कि जब ये ऊंचा उठना चाहता है पुरुषार्थ के द्वारा और परमात्मा की कृपा से, जब ऊपर उठने लगता है तो इतना ऊपर उठ सकता है, इतना हो सकता है कि परमात्मा को पाके परमात्मा हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी इस मनुष्य के अंदर है, ये आपके ऊपर निर्भर करना है कि आप किस मार्ग पर जाते हैं, श्रेय मार्ग या प्रेम मार्ग। जो थोड़े समय के लिए इंद्रियों को तृप्त करे और बाद में हमेशा के लिए दुख क्लेश दे उसको प्रेम मार्ग कहते हैं। और पहले तो तपस्या, पहले तो तितिक्षा, पहले तो कष्ट और बाद में अनंत जन्मों की यात्रा पूरी हो जाए, आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाए, उस मार्ग को श्रेय मार्ग कहते हैं। और अंतर यात्रा श्रेय मार्ग है और बहिर यात्रा जो है वो प्रेम मार्ग है। मूर्ख व्यक्ति प्रेम मार्ग को अपनाते हैं और उत्तम पुरुष विवेकी पुरुष अंतर मार्ग को अपनाते हैं। साथ संगत जी, बुलाकी राम जानवरों को चराने का काम करता था और गुलाम उसका मालिक था। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनो, आपके जीवन में ये कहानी क्रांति ला सकती है। रोज बुलाकी राम जाता था, पशुओं को चराता था, अनपढ़ था, कभी पढ़ा लिखा नहीं था वो और बहुत गरीब था, लेकिन वो कहीं से राम नाम सुन रखा था और वो हमेशा पशुओं को चराते राम 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 करते रहता था। राम नाम में इतनी शक्ति है कि पहाड़ जितना पाप क्यों ना हो उसको भस्म करने के लिए, जलाने के लिए राम नाम एक अग्नि के समान है। ज्ञान अग्नि कर्म गर्धन, प्रभु का नाम जो है पाप को जलाने के लिए अग्नि के समान है। बुलाकी राम राम का सुमरण करता है, पशुओं को चराता है और कभी कभी दरख्त के नीचे नाचता है राम राम बोलकर, क्योंकि राम का स्मरण करते करते अंदर एक खुमारी पैदा होता है, एक नशा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो नशा जिसको मस्ती भी कहते हैं, प्रेमोन्माद कहते हैं, वो भाग्यशाली को प्राप्त होता है, जो मीरा को प्राप्त हुआ, नरसिंह मेहता को प्राप्त हुआ, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त। बुलाकी राम दरख्त के पास नाच रहा है राम का सुमरण कर, कभी बैठ जाता है, कभी रोता है। लोगों ने जाकर के गुलाम को बोला कि जिस नौकर को तुमने रखा है वो तो बहुत निकम्मा है, वो आंख बंद करके बैठा रहता है दरख्त के नीचे, कभी नाचते रहता है और पशु जो है लोगों के खेत को चर जाता है, तुम इस नौकर को बदल दो, ये ठीक नहीं। गुलाम सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, लोगों की बातों पर परवाह नहीं किया। वो एक दिन वो खुद देखने के लिए आया कि वास्तविक में मेरा नौकर क्या कर रहा है। उस दिन बुलाकी राम के मन में आया कि संत लोग भंडारा करते हैं, आज हमारे पास पैसा तो नहीं है लेकिन मानसिक रूप से हम सारे संतों को बुलाते हैं। अंदर बैठा ध्यान में सारे संतों को बुलाया, मंदिर जा जा के, घर जा जा के, आश्रमों में जा जा के, सारे आ जाओ, और मन से ही बुलाना, इसमें तो कोई कैश लगता है। सारे संतों को बुलाया, आ जाओ, आज जो है हम पक्का भंडारा करेंगे। और सारे संत बैठ गए, पूड़ी हलवा सब्जी सारे को बरता रहा है बुलाकी राम मन से ही अंदर। इतने में गुलाल आया और उसके पीठ पर एक लात मारा, निकम्मा तुमको हमने पशुओं को चराने के लिए भेजा है और तुम यहां आंख बंद करके मस्ती में रहता है। सात संगत जी कहते हैं कि जब गुलाल ने उसके पीठ पर लात मारा उस वक्त वो मानसिक रूप से दही बांट रहा था, बड़े इस डोगा में लेकर के लोगों को दही दे रहा था, और प्रत्यक्ष रूप में इतना बड़ा डोंगा दही से भरा हुआ गिर पड़ा। ये आश्चर्यचकित घटना को देखकर गुलाल हैरान हो गया। एक तरफ बुलाकी राम गुलाल के चरणों में गिरता है कि मालिक क्षमा कर दो, और एक तरफ गुलाल बुलाकी राम के चरणों में गिरता है कि तू धन्य है, तू धन्य है। साध संगत जी कहते हैं, बुलाकी राम कहता है कि जब तुमने मुझको लात मारा उस वेले मैं कल्पनाओं में जी रहा था, और जैसे तुमने लात मारा हमारे विचार समाप्त हो गए, और जो दूरियां थी वो समाप्त हो गया, और निर्गुण निराकार में उसकी वृत्ति जुड़ गई, उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया बुलाकी राम। एक तरफ बुलाकी राम गुलाल को कह रहा है तू मेरा गुरु है, और गुलाल कहता है नहीं तू मेरा गुरु है। साध संगत जी, इस अद्भुत घटना में एक साथ गुरु और शिष्य दोनों को ज्ञान प्राप्त हो, और कहते हैं गुलाल ने सारी जिंदगी बुलाकी राम को बुल्ले शाह कहा, तू तो शाह है, और उसके जब तक वो जिंदा रहा गुलाल उसके चरणों को दबाता रहा, तुम्हारी कृपा है, और मेरे से अपराध हुआ है कि तुमने पांव तुमको पांव मारा है। और बुलाकी राम कहता है यदि तूने पांव नहीं मारता तो जो भेद था वो नहीं मिटता, मैं अभेद दर्शन मेरा नहीं होता। और साध संगत जी उसने परम तत्व जो परमात्मा है उसको साक्षात कर करके वो अपना जीवन सार्थक किया, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का भाव यह है कि जिधर देखें अपने इष्ट का ही दर्शन करें, और हमेशा चारों तरफ इष्ट का ही दर्शन, जिधर भी देखें पत्तों में पंछियों में पहाड़ों में बादलों में जिधर भी देखें अपना इष्ट का ही दर्शन करें, यह है भक्ति। और ज्ञान क्या है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक प्यास सत्य की। ज्ञान अपने से नहीं होता, ये स्वयं साध्य नहीं है, एक गुरु की कृपा से होता है। जिसको भी हुआ है आज तक वो गुरु के द्वारा हुआ है। अष्टावक्र जी राजा जनक को ज्ञान दे रहे हैं, आप लोगों को पता है ये कहानी कि वो माता के गर्भ में ही था अष्टावक्र, तो उसको ज्ञान हो गया था। एक दिन उनके पिताजी वेद का पाठ कर रहे थे और गर्भ से ही कहता है पिताजी आपने ये गलत पाठ किया है। उसने गुस्से में आकर के, क्योंकि अहंकार को चोट लगता है ना कभी कभी, कभी कभी आपके छोटे बच्चे आपकी कोई गलती को बता दे तो अहंकार को बहुत चोट लगता है, तू ज्यादा सियाना है, वो जान रहा है कि वो सच बोलता है लेकिन फिर भी अहंकार को चोट लगता है तो क्रोध होता है। क्रोध में कहा कि जा तू पैदा लेगा तो तेरा आठों अंग टेढ़ा होगा, लेकिन साथ संग जी शरीर के टेढ़ा मेढ़ा होने से ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं पैदा होगा, ठीक है। राजा जनक ने यह घोषणा किया था कि जो मुझको ज्ञान कराएगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, यहां तक कि सब कुछ दे दूंगा, लेकिन एक ये भी शर्त रखा था कि दावा करके आएगा मेरे पास और ज्ञान नहीं करा पाएगा तो उसको हम बंदी बना लेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग आए और असफल रहे और बाद में कैद खाने में मजबूर हुए जीने। ये अष्टावक्र का पिता भी दावा किया था राजा जनक को कि मैं ज्ञान कराऊंगा, लेकिन ज्ञान नहीं करा सका और उसको बंदी खाने में डाल दिया राजा ने। अष्टावक्र पूछता है अपनी मां से, मां मेरे पिताजी कहां है, कितने दिन हो गए आए नहीं। पहले तो टालती रही, एक दिन सच सच बता दी कि बेटा वो कैद खाने में है राजा के, क्या कारण है, उन्होंने ज्ञान नहीं करा सके, दावा किए थे लेकिन ज्ञान नहीं करा सके। सात संगत जी, जो व्यक्ति गुरु की सेवा करके, गुरु की मेहर प्राप्त करके, आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त करता है, वही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। अपने से जो शास्त्र को पढ़ता है या कॉलेजों में पढ़ता है, वो शब्दों को इकट्ठा तो कर लेता है, मंत्र तो रट लेता है बहुत, उच्चारण भी शुद्ध करता है, लेकिन उसको आत्मा का बोध नहीं होता। आत्मा का बोध तो गुरु परंपरा से, गुरु को ईश्वर समझ करके जो विद्या प्राप्त करता है उसी को आत्मा का बोध होता है। आज अपनी माँ को अष्टावक्र कहता है, माँ मैं जाकर के राजा जनक को ज्ञान कराऊंगा, बेटा तू ना जा, मैंने तुम्हारे पिता को खो बैठी हूं, जब वो नहीं ज्ञान करा सके तू किस प्रकार कराएगा। लेकिन सात संगत जी, वो गया और भरी सभा में जब प्रवेश किया राजा के पास, राजा सिंहासन पर बैठा था, सारे विद्वान बैठे थे, जब राजा के पास पहुंचा अष्टावक्र, उसका आठवां अंग टेढ़ा चलता है तो बड़ा अजीब ढंग, पूरा शरीर झूठता है कि नाक किधर है, आंख किधर है, हाथ किधर है, पांव किधर है, पूरा शरीर जो है सो झूल रहा है। ये सारे लोग देख करके हंस पड़े कि ये दावा करने गया ज्ञान प्राप्त, ज्ञान देंगे हम राजा जनक को। सारे लोग जब हंस पड़े तो अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक को, जनक मैंने समझा था कि तुमने विद्वानों की सभा बुलाया है, लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूं, तुमने तो चमारों की सभा बुलाया है, ये तो चमार है, ये शरीर को देख रहे हैं, ये चमड़ी को देख रहे हैं, ये मांस को देख रहे हैं। हे राजन, जैसे घड़ा के टेढ़ा मेढ़ा होने से उसके अंदर जो आकाश है इथर, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, इसी तरह से शरीर के टेढ़ा मेढ़ा होने से शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। इतना ही कहना था कि राजा के सिंहासन से उतर करके साष्टांग दंडवत करता है अष्टावक्र को और उसको राज सिंहासन पर बैठाता है। आठ वर्ष के बाद सात संग जी, जरूरी नहीं है कि शरीर के बुजुर्ग होने से ज्ञान भी बुजुर्ग हो जाए, जरूरी नहीं है। संकादिक बालक थे और उसको ब्रह्म ज्ञान था, सुखदेव जी अभी बालक थे और उसको ब्रह्म ज्ञान था, जरूरी नहीं है। धूप में दाढ़ी पका लेने से ज्ञान नहीं होता, गुरु के चरणों में जो मिट जाता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज अष्टावक्र उसको ज्ञान दे रहा है। एक कहानी बहुत लंबी है, लेकिन एक मंत्र सिर्फ आपको आज बताऊंगा। राजा जनक पूछता है, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कि मुझको ज्ञान कैसे हो।
वैराग्यम च कथम प्राप्त। और वैराग्य के बगैर मुक्ति नहीं, के ज्ञान नहीं होता, हमारा जीवन वैराग्यमान कैसे हो जाएगा। कथम मुक्ति इच्छसि एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभो, हे गुरुदेव, हमको ये बताए कि मुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे हो। और ब्रह्म ज्ञान वैराग्य के बगैर नहीं होता, हमारा जीवन वैराग्य से कैसे भर जाए और मैं मुक्त कैसे हूं, आवागमन जन्म मरण से कैसे समाप्त हो जाऊं। सात संग जी वहां पर वो अष्टावक्र जी ज्ञान देते हैं। हे राजन, मुक्तिम इच्छसि चेता, हे शिष्य, हे बच्चे, हे जनक, यदि तुम्हें ज्ञान की इच्छा है तो विष्यान विस्मर देश, विषयों को जहर समझ के त्याग दो। विष को खाने से, जहर को खाने से एक जन्म खराब होता है, लेकिन विषय रूपी जहर को खाने से अनंत जन्म खराब हो जाता है। इसलिए विषयों को विषय के समान समझ के त्याग दो और पांच चीजों को अमृत समझ के पी जाओ। वो पांच चीजें क्या है? क्षमा, आर्जव, दया, तोष और सत्यम। पीयूषवत भज, इसको अमृत समझ के पी जाओ। पहला है क्षमा। सात संग जी, आज का इंसान एक वैर विरोध मन में रख करके जी रहा है। आज से 10 साल पहले आप किसी के घर गए, चाय नहीं पूछा, आपने मन में एक गांठ बनाया हुआ है कि मेरे घर में आएगा मैं दरवाजा नहीं खोलेंगे, उसने चाय नहीं पूछा। हर एक आदमी सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, पति पत्नी के साथ, हर एक के मन में जो है ना एक गिला सिकवा है। यदि आप इस बोझ से हल्का होना चाहते हैं तो दो बातें याद रखो आज मेरा। यदि तुमसे कोई गलती हुई हो किसी के आगे, तुमने किसी को बुरा वचन बोला है, किसी को अपमान किया है, किसी के मन को ठेस पहुंचाया है, तो जाकर के उसके आगे क्षमा मांग लो कि भाई मैंने तुमको अच्छा नहीं बोला, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाया, जाके क्षमा मांग लो, आधा हल्के हो जाओ। और यदि तुमको किसी ने कोई गलत बोला है, गलत किया है, उसको क्षमा कर दो। क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, ये दो एक ऐसी चीज है, इसको अपनाने से इंसान हल्का हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजा जनक, जीवन में क्षमा को अपनाओ। आर्जव का भाव है सरलता। सत्संग जी समा हो गया है इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन आर्जव का मतलब होता है सरलता। जैसे एक महीने के बालक को आप एक थप्पड़ मारें और 5 मिनट के बाद प्रेम से बुलाएं, वो आ जाएगा, उसके मन में कोई विरोध नहीं है, कोई गांठ नहीं बनाया है। क्षमा के बाद सरलता, जीवन में सरलता, बी इन फैंसी। जब आपके जीवन में सरलता होगा तो वैर विरोध समाप्त हो जाएगा। क्षमा, आर्जव और दया, हर के ऊपर दया, हमेशा दया धर्म का मूल है। क्षमा, आर्जव, दया, तोष, संतोष। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, संतुष्ट सततम योगी, जो संतुष्ट है, जो प्रभु के ऑलवेज कहता है, हे वाहिगुरु, हे परमात्मा, हे सच्चे पातशाह, जितना दिया है हमें काफी है, ऑलवेज थैंक्स जो करता है परमात्मा को, वो योगी है। क्षमा, आर्जव, दया, तोष और सत्यम, सत्य के मार्ग पर चलना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर।
तो साथ संगत जी, यदि आप जो भी सत्संग में परमात्मा ने बुलाया है ये दास को, यदि आप इसको अपनाते हैं तो आपका जीवन जो है सर्वे भवन्तो सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्तु भावः। आप लोगों का जीवन आनंद में सुख में हो। और एक ही चीज कहूंगा, वही है मरकजे काबा, वही राहे बुतखाना, जहां दीवाने दो बैठ की शरम की बात करते हैं। जब आपस में मिले तो सत्संग की चर्चा करें, पर का बुरा न रखो चित, निंदा चुगली वैमनस इन चीजों से ऊपर उठा करके जीवन को ऊंचा बनाए और इस धरती को आनंद में खुशियों से भर दे। आज इतना ही। ओम शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते।